के ज्वाइन करने का। बैटिंग कोच यूनुस खान हमारे साथ हैं। यूनुस भाई, मैं आपसे पूछूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों सीरीज जीतने का, थोड़ा सा हमसे शेयर करिएगा प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो आपको रमजान की बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि इस बाबरकत महीने में सब मुसलमानों को अल्लाह और उनकी इबादात को कबूल करें और हमें अच्छे काम करने के लिए और जो जितने सेक्रीफाइसेस इस महीने में मुसलमान करते हैं अल्लाह उसको भी कबूल करें। मैं अगर इस सीरीज की बात करूं, सबसे पहले तो दोबारा गेम की मुबारकबाद कि हमने एक यंग टीम के साथ साउथ अफ्रीका का सीरीज विन किया है और इसको ऑलमोस्ट 6 से 7 साल से ज़्यादा हो गया है कि जब हमने लास्ट सीरीज जीती हुई थी। तो ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जब पाकिस्तान टीम अवे जाके विन करती है तो ये बहुत अच्छा एक साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इस सीरीज को लेके, बहुत सारे लर्निंग भी मौजूद है सीरीज को लेके। COVID-19 है, उसके बाद आप डे एंड नाइट क्रिकेट खेलते हैं, रोज क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो एड्रेस होनी है वो यहाँ मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर मैं इस टूर को देखूँ पाकिस्तान की सीरीज के बाद तो बहुत ज़्यादा लर्निंग यहाँ पे मौजूद थी और क्रिकेट भी काफ़ी टफ क्रिकेट थी क्योंकि बैक टू बैक जैसे मैंने पहले कहा हर दिन क्रिकेट खेलते हो तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को लेके चलना होता है क्योंकि जब आपके पास गैप होता है तो आपके पास रिकवरी के लिए और प्लान अपने एग्जीक्यूशन के लिए टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक दिन के बाद मैचेस हो रहे थे खास तौर पे T20। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो एक अच्छा साइन ये है कि पाकिस्तान सक्सेसफुल खड़ा है इस वक्त जी। आप प्लीज जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाते हैं जी। खालिद खान, मोइशा, ऋषि शकूर एंड शाहिद हाशमी।
यूनुस अस्सलाम वालेकुम। यूनुस अभी आपने बात की कि अभी बहुत सारी चीज़ों का एड्रेस करना है और बहुत सारी लर्निंग करनी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस साउथ अफ्रीका टीम को फेस कर रहे थे खासतौर पर T20 सीरीज में, तो उसमें तो उनके तो 5 तो सफ़ेद बोले खिलाड़ी मौजूद थे, फिर उनका कप्तान बबूमा तख्मी हो गया और भी एक दो उनके इशूज चले, तो मतलब मोरलेस तो इक्वल फुटिंग पे हम कहेंगे ना दोनों टीमें खड़ी हुई थी। तो आप जो बात कर रहे हैं कि हमें बहुत सी चीज़ों को एड्रेस करना है और जो लर्निंग करनी है, वो क्या एरिया तो आपकी नज़र में बैटिंग को आप आइडेंटिफाई करते हैं?
खाली भाई, मेरे लिए बड़ी खुशायन बात है कि मैंने देखा है कि हमारे प्लेयर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे आने के बाद ये सब कुछ हो रहा है या मैं बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैंने देखा है कि जितनी भी इनिंग्स हुई हैं उसमें हम कुछ बड़ी इनिंग्स हमें नजर आई, जिस तरह फखर जमान की वो इनिंग। मुझे भी हमेशा बड़ी ख्वाहिश होती है कि प्लेयर जाके 100 रन ना करें बल्कि प्लेयर कोई ऐसी इनिंग खेले, बेशक हम लूजिंग साइड पे खड़े हो लेकिन हमें पता चले कि हमने कुछ पीछे नहीं छोड़ा। तो फखर जमान की कुछ इनिंग्स हमने देखी कि उसने जाके अकेले ही आखिर तक खेले। उसके बाद अगर मैं बाबर आजम की बात करूं तो उन्होंने भी वो इनिंग्स खेली जो कि हम हमेशा ये बात करते थे कि बाबर आजम एक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं, तो उन्होंने जिस तरह T20 में उनकी 100 रन की इनिंग भी और ऑल दी वे वो जाके खेले और अमेजिंग बैटिंग थी उनकी, तो ये वो चीज़ें थी। और दूसरी बात ये कि जो हमारी शॉर्ट सिलेक्शन थी वो बहुत इंप्रूव हो रही थी। हमेशा मेरी ख्वाहिश होती क्योंकि मैं खुद ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि प्लेयर जो है वो फुल फेस के साथ खेलें और ग्राउंड के दोनों तरफ वो खेलें, तो ये वो एक अच्छी पॉजिटिव थी। और साथ में ही जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि प्लेयर्स को ये बावर कराए जाऊँ कि जैसे सिचुएशन हो वैसे खेलें, तो मेरे ख्याल से ये वो पॉजिटिव्स हैं और कुछ लर्निंग है कि जो कि हमें एज अ बैटिंग यूनिट सीखनी है। और प्लेयर वही अच्छे होते हैं कि जो बार बार सीखे, और हमने देखा कि बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, उसके बाद फखर जमान हो गए, ये ऐसे प्लेयर बन रहे हैं जो कि आगे जाके इस टीम को बहुत ज़्यादा सर्व कर सकते हैं। और फिर मैं अगर मिडिल ऑर्डर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा शफलिंग हमने देखी कि प्लेयर्स, हमने कोशिश की कि प्लेयर्स को खिलाया जाए। मैं यहाँ पे हैदर अली की ज़रूर बात करूँगा कि हमने अगर पिछले सीरीज में देखा तो हैदर अली ओपन कर रहे थे, फिर जब उन्होंने PSL खेला तो जब वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेले तो नीचे नंबर्स पे बहुत जबरदस्त अमेजिंग की परफॉर्मेंस नजर आई। हमने यहाँ भी उनको कोशिश की कि वो उस रोल में मर्ज हो सके, लेकिन ये वो जो जो वीक एरियाज हैं हमारी, हमने देखा कि इवन लास्ट कल के मैच में हमने देखा कि जब हमें रन अ बॉल चाहिए तो जहाँ पे 4 रन का रन चाहिए पर ओवर, वहां जाके हम एंड में अमेजिंग है कि फिर उसके बाद हमने उसको चेंज भी कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये वो एड्रेसेस हैं जो कि हमने लर्न करने, हमने सीखने हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक यंग टीम है, प्लेयर्स अभी सेटल हो रहे हैं, नंबर्स अभी उनको क्लियर नहीं है, लेकिन आगे जाके फिर जाके जिम्बाब्वे हमारे सामने है, और तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा चांस है यंगस्टर के पास, तो दोबारा जाएं और अपने प्लेयर अपने कंट्री के लिए खेलें, और वो जो जो रोल है, जो उनको जिस रोल में हम मर्ज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान रोल में उनको देखना चाह रहा है, क्योंकि आगे जाके हमारे पास बहुत टफ क्रिकेट आ रही है, फिर हमारे पास वर्ल्ड T20 आ रहा है, तो हमें जाके इंडिया खेलना है। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कि टॉप ऑर्डर के से भी रन हो, लेकिन लोअर ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजुकत आपको जाके 10 से 15 रन के जब रन बिठोड़ने होते करने होते, तो उसमें हमें नजर आया कि हम पीछे रह जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमने एड्रेस करनी है और हमने लर्न करने और हमने इसको ओवरकम करके आगे एक टॉप टॉप की टीम बनना है।
जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहित शाह बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको जीतना, इंडीड बड़ी क्रेडिटेबल चीज होती है, बाहर जाके आप जीते, एक सीरीज नहीं दो सीरीज आगे पीछे आपने जीती। एट द सेम टाइम देखें, हमें जो फील हुआ है एज अ स्पोर्ट्स राइटर या स्पोर्ट्स जो एनालिसिस जर्नलिस्ट, कि जब आपकी जो मिडल और लोअर मिडल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर तो बड़ा अच्छा खेला कोई शक नहीं, बड़े रन स्कोर किए आपके ओपनर्स ने, वन डाउन ने, लेकिन जब एक सिचुएशन आती है कि आपको 10 ओवर्स में आपने 100 रन बनाए टीम ने, आपको अगले 10 ओवर में सिर्फ 4.5 की एवरेज से आपको 45 रन बनाने हैं, तो बैट्समैन लाइक हैदर अली और आसिफ अली ये जाके अपनी नेचुरल गेम किस तरह वहां खेल सकते हैं, कि जरूर आप स्ट्रेस करते हैं उन पर कि आप जी जाके नेचुरल गेम खेलें, यहाँ तो 5-6 ओवर की बात होती है, अगर वो 5-6 ओवर स्टे करें तो वो 45 रन वो आराम से बना सकते हैं। नेचुरल वे में तो हिट आउट करेंगे तो साथ ही उनके आउट होने के चांस हैं, तो इनको थोड़ा सा एज अ बैटिंग कोच आप ये नहीं थोड़ा स्ट्रेस करते कि भाई जो सिचुएशन है उसके मुताबिक भी कभी कभी खेला जाता है, ना कि आप अपनी नेचुरल वे ऑफ स्ट्रोक प्ले उसको ही आप अनलीश करें और उसको ही दिखाएं लोगों को और जाते हुए मारदार शुरू कर दें। वहां तो सिर्फ 5 ओवर स्टे करने वाली बात थी और मैच आपके पास था, इतना स्ट्रेस ना होता, इतना जाके नीचे जाके आपको मुश्किल से ना जीतना पड़ता, इस पे थोड़ा सा बताइए।
बिल्कुल मोहित भाई, आपने खुद ही सारे क्वेश्चन कर दिए और आंसर भी आपने खुद ही दे दिया। और जहां तक स्ट्रेस की बात है तो खैर मुझे ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए, अभी एयरपोर्ट पे एक मीटिंग है मेरी, तो मैं जाके एड्रेस करता हूँ हर चीजें जाके, और कोशिश करता हूँ कि मैं एक दिन का भी ज्यादा वेट ना करूं। मेरी अभी छोटी सी मीटिंग है जाके एयरपोर्ट लॉन्च में ही, मैं उनको कुछ पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मैच के मुताबिक। बाजुबात प्लेयर भी मुझसे बहुत ज्यादा चरकते हैं कि यार ये यूनुस भाई हर वक्त क्रिकेट की बात करते, मैं उनसे बात करता हूँ जब कोई अच्छी चीज चल रही होती है तो उसको वैसे चलने देना है, और जब खुदा ना खासा हम कहीं जाके हारते हैं या हमें हम पे टफ डे आते हैं, तो मैं उस दिन बहुत कम उनको जाके फीड करता हूँ, क्योंकि उस दिन उनकी एक मेंटल स्टेट थोड़ा सा डाउन होता है, तो स्ट्रेस तो ये है वो जो चीजें जो हम एड्रेस करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे मैंने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले बात की जब खालिद भाई से, कि ये वो चीजें हैं जो कि हमने एड्रेस करनी, लेकिन ऑन द टूर जैसे मैं बार बार बात करूँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोचिज की, हम जैसे कोचिज की जो कि उनके साथ बात करें, वन टू वन बात भी करते हैं, लेकिन मैं जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि वो एक रोल होता है जो कि आपने आपने आपको मर्ज करना होता है, वो जब तक आप अपने मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो वो लर्न नहीं करते। तो मेरे ख्याल से हैदर अली वो सीख रहे हैं, और उसके बाद अगर मैं लोअर ऑर्डर की और थोड़ी बात करूँ तो बिल्कुल वो सीख रहे हैं, और हमने देखा कि पिछली कुछ सीरीजों में देखा कि हमारे अगर हम टॉप ऑर्डर बैटिंग की बात करें तो वो परफॉर्म नहीं करती थी, और लेकिन लोअर ऑर्डर परफॉर्म करते थे, जैसे हमने इंग्लैंड में इंग्लैंड की बात कर लें, उसके बाद न्यूजीलैंड की बात कर लें, मोहम्मद हफीज यहाँ हमें थोड़े से ऑफ लगे, क्योंकि होता है बाज कर दिए कि जब आपके टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा अच्छा कर रही होती है और आपके ओपनर्स खासतौर पर परफॉर्म कर रहे, तो लोअर ऑर्डर को इतनी बैटिंग नहीं मिलती, और सडनली जब वो उस क्योंकि उनको इतनी फीडिंग नहीं हुई होती है, तो जब वो क्रंच सिचुएशन में आते हैं तो उनकी वो जो जो एक फॉर्म होती है वो नजर नहीं आती। तो ये बिल्कुल हम एड्रेस करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे जैसे मैंने बार बार कहा कि डे एंड नाइट क्रिकेट हो रही होती है, तो बाज़ आप बहुत ज्यादा प्लेयर्स को पुश भी नहीं कर सकते, लेकिन प्लेयर को खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम उनको कराते भी हैं और खुद सीख भी रहे हैं। और जैसे कल का मैच की बात है, तो अगर जैसे फखर खेल रहे थे, उससे पहले बाबर खेल रहे थे, अगर मेरे ख्याल से उनमें से कोई प्लेयर जो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने बैट्समैन से बात करूं कि पीछे कुछ छोड़ के ना है, तो हमने कल पीछे कुछ छोड़ा और सडनली फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमसे एक रन अ बॉल भी नहीं हो रहा। तो ये वो लर्निंग है जो जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्लेयर सीखते हैं और जब वो मिस्टेक्स करते हैं तो वो सीखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम यूनुस।
वालेकुम सलाम
यूनुस, जो अभी बात हो रही है हमारी जो बैटिंग है, हम देखते हैं कि हम फखर, बाबर, रिजवान और फिर हफीज, मतलब ये चार ऐसे प्लेयर हैं कि जिनके गेट घूम रही है और उसके बाद नीचे के खिलाड़ी हैं। आप खुद एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रहे हैं, आप समझते हैं कि कितना टाइम और कितने मैचेस चाहिए मतलब किसी भी प्लेयर को परखने के लिए, मौके देने के लिए कि वो कुछ परफॉर्म करे? क्योंकि अब जब हम वर्ल्ड T20 की बात कर रहे हैं, आगे टफ सीरीज की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हैदर अली और आसिफ को हम जितने मौके दे रहे हैं, फिर ऐसा ना हो कि जब वक्त बहुत कम रह जाए फिर हम उनसे मायूस होकर फिर हम कुछ नए प्लेयर्स को, जिस तरह आपने शफलिंग की भी बात की, तो ये कब तक प्रोसेस ये मतलब चलते रहना चाहिए कि एक प्लेयर को हम कब तक मौके देते रहें?
जी भाई, ये जो आपको पता है कि मैं एक बैटिंग कोच हूँ, तो बहुत सारी चीजें से मैंने बार बार कहा कि मैं उसकी तरफ नजर तो आ रहा होता हूँ, लेकिन मैं उसका पार्ट होता भी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वो फैसला मैं नहीं कर पाता। अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ पे चीफ सिलेक्टर्स मौजूद हैं, हेड कोच का मौजूद है, उसके बाद कैप्टन मौजूद है, तो ये उनके डिसीजन कि प्लेयर को कितना कितना मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी बात करूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप 2 से 3 सीरीज कोई भी प्लेयर खेलें, तो मेरे ख्याल से उसको अगर वो उस कैलिबर के प्लेयर होंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैं जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे, मैं एक बैटिंग कोच हूँ तो मैं जाके अपने सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, मैं फीड कर सकता हूँ सबको। अगर मुझसे जब वो कोई भी, क्योंकि मैं उनके अंडर में हूँ, वो मेरे अंडर में नहीं है, तो मैं बहुत सारी चीजें जाके एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फाइनली फैसला आपको पता है कि हेड कोच के होते हैं, उसके बाद कैप्टन के होते हैं, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी फीडबैक जरूर दूँ। तो मेरे ख्याल से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक राइट कम्बिनेशन हम उठा रहे हैं, प्लेयर्स हैं जो सिचुएशन में सूटेबल हैं, जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, उनको वो मौका दें। और साथ में एक बहुत मुश्किल हो जाता है कि बाज़ुकात आप अगर किसी प्लेयर को कहो कि वो नेशनल गेम ना खेलें, क्योंकि फिर मैंने सेम टाइम पे देखा कि बाज़ुकात ये न्यूज भी आती है कि कोचेज जो है वो उनको अपना नेशनल गेम नहीं खेलने देते हैं। लेकिन जब जैसे मोहित शाह साहब ने कहा कि उनको चेंज होना है, आपको मैसेजेस भी देने हैं, तो एक मैच के दौरान ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सेम टाइम पे ये प्लेयर्स को अंडरस्टैंडिंग करनी है, उनको ऑनरशिप लेनी है, उनको वो प्रिपरेशन करनी है। हम करा तो सकते हैं, लेकिन आपको बाज़ुकात, क्योंकि ये क्लब की लेवल की क्रिकेट नहीं है, हम जाके उनके ऊपर हर वक्त डंडा परेड नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से प्लेयर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और कर रहे हैं प्लेयर। हमने देखा है कि प्लेयर रोल में मर्ज हो रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ, जिस तरह मैं क्रिकेट खेलता था, टेस्ट क्रिकेट खेलता था, या वनडे टी खेलता था, या इवन T20 खेलता था, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मेरे पास कोच कम आए बल्कि मैं खुद ही लर्निंग करूं। और बाज़ुकात मैं एज ए टॉप प्लेयर, मैं कोचेस को मैं ज्यादा अपने आप के करीब आने भी नहीं देता था, क्योंकि मैं खुद रियलाइज करने का होता था कि मुझे सीखना है, और जरूरी नहीं कि मेरे पास हर वक्त कोचेस खड़े होंगे। ये जरूरी है प्लेयर्स को कि वो अंडरस्टैंड करें और अपने मुल्क के लिए जिस तरह हमें खेलना चाहिए। हमने देखा कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं दुनिया में जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन वो अपने जब मुल्क की बात आती है, कंट्री की बात आती है, तो वो अपने खेल को मर्ज करते हैं। और जब उनको 15 रन चाहिए होते पर ओवर, तो वो भी करने जाते हैं, और जब उनको रन बॉल खेलना होता है तो वो भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को ये खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो किस तरह उनको अपने मुल्क को सक्सेस दिलानी है और कैसे उनका रोल है।
थैंक यू
यूनुस। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम।
यूनुस, जैसे अभी आपने कहा कि प्लेयर सीख रहे हैं और सीखते हैं, तो क्या हम जल्दी नहीं कर रहे हैं? जिस आपके जमाने में जब प्लेयर आता था तो बड़ा मैच्योर होके आता था, आपने जब 2000 में क्रिकेट खेले, बड़े मैच्योर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। क्या हम, ठीक है आप सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या हम जल्दी नहीं कर रहे हैं लड़कों को एक एक PSL पे, एक एक नेशनल T20 पे, एक T20 में डेब्यू पे 100 करने पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके लर्न कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेज नहीं है लर्न करने की?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शायद भाई। ये हमेशा मैं लास्ट जब आपसे मेरी जब मैं आपके सामने आता हूँ, मैंने एग्जैक्टली यही बात की थी कि अगर आप किसी टेस्ट मैच के लिए किसी प्लेयर को लेते हैं तो उसके पीछे फर्स्ट क्लास की क्रिकेट होनी चाहिए। खैर आप ग्रेड 2 की क्रिकेट नहीं है, हम जब हम अपनी बात करें तो हम ग्रेड 2 की क्रिकेट से बहुत ज्यादा सीखते थे। उसके बाद अगर कोई भी T20 का प्लेयर हो या वनडे के प्लेयर हो तो उनको उनके पीछे लिस्ट ए के मैचेस होना चाहिए और बाजुकात। लेकिन बात वही है कि जैसे मैं और आप हैं तो हम उस सीरीज से हैं जिसमें समझते थे कि प्लेयर्स को इतना क्रिकेट खेलने चाहिए, लेकिन बहुत सारी मीडिया पे बात होती है, बहुत सारे कमेंटेटर्स बात करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बात करते हैं, ये प्रेशर बिल्ड होता है टीमों पे, कोचेस पे, उसके बाद सेलेक्टर्स पे कि इस प्लेयर को पिक करें। और जब हम जैसे लोग जाके YouTube चैनल्स पे बात करते हैं कि जी यूनुस खान को फौरन ले लें क्योंकि वो ही इज रेडी, और यूनुस खान ने सिर्फ दो मैच खेले होते हैं T20 के, तो ये वो प्रेशर क्रिएट होता है, बिल्ड होता है, और फिर सेलेक्टर्स और कोचेज और हेड कोचेज ये फिर ये फैसला करते हैं कि इसको प्लेयर को खिलाया जाए। और मैं बिल्कुल
ग्रेट आप क्या समझते हैं, लेना चाहिए या नहीं?
बिल्कुल, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं जरूर कोई भी किसी प्लेयर को भी पिक करने से पहले मैं जरूर ये बात ये देखूँ कि उसके बेल्ट पे कितनी क्रिकेट है। और देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बाजुकात बात करते हैं कि ये यंग ब्लड की क्रिकेट है, ठीक है, यंग ब्लड की क्रिकेट तो है, T20 यंग ब्लड की क्रिकेट तो है, वनडे क्रिकेट यंग ब्लड की क्रिकेट तो है, लेकिन जो प्लेयर्स मैच्योर हैं और उनकी फिटनेस मौजूद है, उनकी कमिटमेंट मौजूद है और वो परफॉर्म कर सकते हैं और उनके बेल्ट पे काफी क्रिकेट मौजूद है, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो दुनिया में खेल रहे होते हैं बहुत सारे प्लेयर, कंट्री के लिए नहीं खेल रहे होते, यही अगर मैं साउथ अफ्रीका टीम की बात करूं तो बहुत से ऐसे प्लेयर वो जो दूसरे मुल्कों की लीग्स में जाके खेल रहे और अपने कंट्री के लिए नहीं खेल रहे, तो बाजुका तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी प्लेयर को पिक करने से पहले, जैसे मैं बार बार बात करता हूँ और आइंदा भी ये बात करता हूँ, उसके बेल्ट पे कुछ क्रिकेट होनी चाहिए ताकि वो आए और हमें यहाँ पे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हम कोचेस को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपकी कंट्री के जो प्लेयर हो वो बेस्ट हो और उनके और वो उनको जाके जैसे मैं बात करूँ कि जब उनको 10 रन की एवरेज चाहिए तो वो 5 रन की एवरेज ना खेल रहे हो, और जब उनको पांच रन की क्रिकेट खेल अचीव करना और रेट अचीव करना तो वो 15 रन करने जा रहे हो, तो ये तभी आता है जब उनके बेल्ट पे बहुत सारी क्रिकेट बैठी होती है। तो मेरे ख्याल से अब हमें सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि कौन से प्लेयर सूटेबल हैं जिस रोल के लिए और वो उनके पीछे बेल्ट पे क्रिकेट हो तो उनको पिक करना चाहिए।
जी उमर माजिद भट्टी आमिर एंड अब्बास
अब थैंक यू यूनुस भाई, जिस तरह क्रिकेट चेंज हो रही है, हम बैट्समैन की बात करते हैं कि T20 फॉर्मेट काफी तेज हो गया और प्लेयरों को अपने रोल के मुताबिक खेलना है, जाहिर है कोचेस को भी अपने आप को अपडेट करना है ये फॉर्मेट के साथ कैसे वो कोप करना है। अगर हम हैदर की स्पेसिफिकली बात करें, आपने काफी डिटेल में उसके बारे में बात की है, मैं 10 मैचेस का रिकॉर्ड निकाल के बैठा हुआ था रात को, तो मैंने ये चीज देखा कि जब हैदर स्टेप इन करता है पिच के ऊपर तो उसके पास 120 बॉल से ज्यादा 6 मैचेस ऐसे थे जिसमें 120 बॉल उसके पास थे कि वो स्टेप इन कर सके और अपनी बारी ले सके, लेकिन 5, 8, 9, 7, 11 इस तरह की बॉलें खेल के आउट हो रहा था। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे आ रही है हैदर के साथ? ही इज वेरी टैलेंटेड, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कोचिंग को समझ नहीं पा रहा, वो आपके साथ काम नहीं कर पा रहा, या उसकी अपनी प्रॉब्लम है कुछ?
देखिए जैसे अभी पहले ही हमने ये बातें की कि उनको नेशनल गेम खेलना चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उनको अपना नेशनल गेम ना खेलने दूं और उनको मैं कहूँगा यूनुस खान की तरह सीधे बैट से जाके खेलें और 30 बॉलें खेलें और जाके 35 रन करें या 40 रन करें? देखिए ये अभी मैंने खुद ये बात की कि अगर हम शायद हाशमी की बात करें, खालिद अज खान की बात करें, यूनुस खान की बात करें, मोहित शाह की बात करें और साथ में फिर आपकी बात करें, तो ये देखिए ये खुद ही क्रॉस हो गया। तो मेरे ख्याल से इस पे मैं इसको क्या जवाब दूं, लेकिन मैं वो एक प्लेयर हूँ, पिछले दिनों बहुत बातें आई मीडिया में, मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ से आई, प्लेयर कहते हैं या कौन कहते हैं कि जी हमारे कोचेस हमें अपना एक्सप्रेस करने के लिए हमें मौके नहीं देते। तो मेरे ख्याल से हमें बिल्कुल मौका देना चाहिए, हमें इनका बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहिए जब परफॉर्म करें। हाँ, जब जिस वो परफॉर्म ना करें तो हम जैसे लोग आके आपके सवाल के जवाब बिल्कुल देने चाहिए, लेकिन देखिए हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम हैदर अली की बात करें, हैदर अली एक फ्यूचर का एक स्टार प्लेयर बनने जा रहा है। अगर मैं उसकी जब उनका डेब्यू हुआ और हमने, अगर आपको याद हो, आप स्टैट में थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो पहला बॉल खेले हैं उस पर क्या रन किया उन्होंने, अगर आप स्टैट में देखें इंग्लैंड के खिलाफ, तो पहले बॉल पर पहला छक्का, अगर आपको याद हो दूसरी बॉल पर उन्होंने छक्का लगाया था जाके इंग्लैंड में पहले, तो ये उनकी एक नेशनल एक मुझे तो याद है एज ए बैटिंग कोच, और उसको ऑलमोस्ट उस वक्त मैं 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आया था, मुझे ये बात आज भी याद है कि और मैंने जो मैं कहता हूँ ना मेरे वो डायरी में लिखा होता है, मैंने सब डायरी में लिखा होता है, मैं कार्टून बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी बातें उनके लिए देखूँ और उनके साथ फिर अकॉर्डिंगली मैं काम करूँ। लेकिन मैं हमेशा इस बात का बिलीव हूँ कि देखिए कौमी टीम पे आके इस जगह पे आके मैं ये बिल्कुल बात नहीं करूँगी हमें नहीं काम करना चाहिए बिल्कुल काम कर। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर टेक्निक पे काम नहीं हो रहा था और लोग बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी इवन प्लेयर्स की तरफ से भी आते हैं कि जी हमें अपना रोल का पता नहीं चल रहा, हमें जाते हैं तो यूनुस खान जैसे लोग खड़े होते हैं, मिसबाह उल हक जैसे लोग खड़े होते हैं, वकार यूनुस जैसे लोग खड़े होते हैं और उनका प्रेशर ले लेते हैं और हमें अपना गेम नहीं खेलने देते। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हम बस कोशिश करते हैं कि हैदर अली को जैसे प्लेयर को जो कि बहुत टैलेंटेड है उनका बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है उनको उनका नेशनल गेम भी खेलने दिए। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ टैक्टिक्स पे काम होता है बहुत ज्यादा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी टैक्टिक्स पे काम करूँ, मैं उनको अपना टाइम दूँ और जो जिसके प्लेयर के तो जितना कैपेबल है वो जरूर दिया। बिल्कुल हैदर अली के जैसे आपने बात की कि बिल्कुल उनके पास बहुत सारे मौके थे अच्छे रन कर सकते ये बात की थी कि हैदर अली राम पिछले सीरीज देख लें तो वो हमारे लिए ओपनर खेल रहे थे और यहाँ पर हमने क्या किया कि IPL पे सॉरी PSL पे जब उन्होंने परफॉर्म किया नीचे जाके अपने फ्रेंचाइज के लिए तो हमने कोशिश की कि यहाँ पे उनको बार बार कहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे जब आप आते हैं तो प्लेयर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं अपने दौर की बात करूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे टाइम पे कोचेज अच्छे नहीं होते थे, लेकिन मुझे कभी मेरे कोचेज ने आके ये नहीं बताया होगा कि आज इतनी बैटिंग करनी है, आज इस पे काम करना है। मैं तो इवन आखिर तक जब मैं खुद खेलता था मुझे यहाँ अपनी 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 बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं अपने 22-23 करोड़ की आवाम को मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास कोच आए या ना आए, मेरे पास मौके हो ना हो, मुझे नट में प्रैक्टिस मिले ना मिले, मुझे जब मुझे मौका मिले तो मुझे अपने आप को तैयार करना है। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स को भी अंडरस्टैंड करना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोचेस को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेयर को अपनी मिस्टेक से ही लर्न करेंगे। और अगर आप हैदर अली से भी बात करेंगे तो वो भी यही बात करेंगे कि मैं लर्न कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको अपनी वीकनेस को ओवरकम करूँ।
हमारी जितनी जीत है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान के गिर्द घूम रही है, लेकिन जहां दानिश अजीज को मौका मिला, आसिफ अली को मौका मिला या अभी हैदर अली की आपने बड़ी डिटेल बात की, तो ये लड़के एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सके। हमने देखा आपको के आप तो उस वक्त पाकिस्तान टीम में आए जब बड़े बड़े ग्रेट्स थे, फिर आपके साथ मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, इनके साथ भी जाहिर है इनको भी सीनियर्स बताते होंगे वो लकी हैं कि आप जैसे बैटिंग कोच भी मौजूद हैं। तो ये क्या इन लड़कों में बेसिक क्या चीज लैक कर रही है कि जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि आसिफ अली तो 4-5 साल से खेल रहे हैं लेकिन आज तक मुझे नहीं याद पड़ रहा कि उन्होंने कभी मैच जितवाया हो या मैच फिनिश किया हो। तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर हैं कि इनको बार बार मौका मिलता है, हमारे पास जो पीछे बैकअप है वो लड़के नहीं है, या फिर हम चाह रहे हैं कि मजीद इनको चांस देके एक अच्छा प्लेयर लाइक यूनुस खान, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ या मोहम्मद हफीज बना सके?
बाजी भाई ये तो बहुत कम हो पाएगा अब क्या आपको वो वाले प्लेयर आपको मिले, क्योंकि देखें हम अपनी बात करें तो उस वक्त टीम इतनी टफ टीम होती थी, उसमें जगह बनाना आपको पता है कि हमें पता है कि बहुत मुश्किल होता है। मैं तो इवन कराची की टीम में जाना, खालिद भाई सामने बैठे हुए, इन्होंने मेरा दौर देखा हुआ है, मैं तो कराची की टीम में नहीं खेल पाया और 4-5 साल में टॉप क्रिकेटर था। तो पहले तो सिटी की टीम में आना बहुत इतना मुश्किल होता था, तो मजबूरन हमें जाके हम जैसे प्लेयरों को जाके सियालकोट से खेलना पड़ता है, पिशावर से खेलना पड़ता है, मर्दान से खेलना पड़ता है और वहां से फिर आते हैं और फिर सडनली हम अपनी जगह बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन बहुत टफ था, तो ये बहुत हमें मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि एक बेंच मार्क हो, जब कोई भी प्लेयर इस लेवल पे आए तो उसके पास सिर्फ एक आधा सीजन फ्रेंचाइज का ना हो और वो आए और आके परफॉर्म करेंगे। अगर हम हैदर अली की बात करें तो हैदर अली के लिए भी यही हुआ, वो एक सीरीज खेले, वो अपने एक PSL खेले अपने फ्रेंचाइज के लिए और फिर मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने बातें की, बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर, इवन मीडिया ने भी बहुत सारी बात की कि ही इज रेडी और उसको डाल दिया जाए, और लकी रहा कि वो आए और उन्होंने परफॉर्म भी किया। लेकिन आपको पता होता है कि यंग प्लेयर को आके थोड़ा सा आप यहाँ पे आपको जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर नहीं मिलेंगे जो 17-18 साल की उम्र में आके जो परफॉर्म कर सकें, और वो क्योंकि वो क्रिकेट अगर हम उस क्रिकेट की बात करें तो उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस थे। वो वहां से लोग स्टील मिल से चलते थे, चार बसें बदल के आते थे और साईं रजाउल्ला की फिर वो खड़े होते थे साईं रजाउल्ला सामने, और वो फिर वो कहते थे अगर आपने एक बॉल ऊपर खेल दी तो फिर आपको पांच चक्कर, अनवारुल्ला का आपको पांच चक्कर लगाते थे कि भाई बॉल ऊपर खेली कैसे। आज अगर मैं ऐसे कर जाऊं तो पता चला कि सारे प्लेयर मेरे सामने खड़े होंगे कि जी बैटिंग कोच बहुत सख्त है। तो ये वो चीज है जो कि अब नहीं मिल पाएगी, लेकिन बिल्कुल आपको ये मूव फॉरवर्ड करना है और जल्द से जल्द, देखें ये आपके मुल्क की कंट्री है तो आपको जल्द से जल्द फैसले करने हैं, और लेकिन फॉर सेम टाइम आपने प्लेयर को पूरा मौका देना है। दानिश अजीज जैसे प्लेयर जो कि टैलेंटेड हैं, जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, और सडनली हम लोग उनको ये कह देते हैं कि जी वो बैकफुट की बॉल पे वीक हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और मेरे ख्याल से दानिश अजीज हो गए, आसिफ अली हो गए, उसके बाद हैदर अली हो गए, थोड़ा सा टाइम देके उनको, ठीक है पाकिस्तान की जब अपने कंट्री के लिए खेल रहे हो तो आपको रोज रोज डेली डेली परफॉर्म करना होता है, और फिर जब आप परफॉर्म नहीं करते तो आपके ऊपर आपकी एबिलिटी पे क्वेश्चंस होते हैं और प्लेयर को, लेकिन ये कि इस लेवल पे प्लेयर को आके तभी प्लेयर बनते हैं जब ऐसे क्वेश्चन उनके सामने होते हैं और ऐसी बातें होती हैं तो वो इसको ऑन करते हैं और मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह हमने भी की होगी, इंजमामुल हक ने भी की होगी, सईद अनवर ने भी की होगी, क्योंकि जब सईद अनवर आए तो उन्होंने एक आधे मैच में जाके पेयर किया, उसके बाद वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने। तो मेरे ख्याल से हमें प्लेयर के साथ इंसाफ करना चाहिए, हमें इनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और खासतौर पर हमें मीडिया पे जाके अपने यूट्यूब चैनल पे जाके थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए हमें, ताकि ये ना हो कि ये प्लेयर जो हमारा फ्यूचर है, और सडनली ऐसे हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो कि पाकिस्तान के लिए अपनी कंट्री के लिए बहुत सारा परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन हमने उनको प्रेशराइज करके या हमने उनको सही मौके भी नहीं दिए और वो आज वो खेल सकते थे बहुत, लेकिन वो नहीं खेले। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए, लेकिन फॉर द सेम टाइम पे बहुत जल्द हमें फैसले करने हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत टफ क्रिकेट आने वाली है, तो हमें एक अच्छी टीम, और खासतौर पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैं मिडल ऑर्डर की बात करता हूँ, हमारी शफलिंग इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि प्लेयर डबल माइंडेड ना हो, क्योंकि ये वो वाले प्लेयर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा वो जो एक बट्टी में उससे आए हुए हैं, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल के आए होते हैं और लकीली ये फिर परफॉर्म करते हैं तो स्टार प्लेयर बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे प्लेयर देखा है मॉडर्न सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कंट्रीज की बात कर रहा हूँ कि वहाँ जाके अब आजकल यही होता है कि कोई भी प्लेयर सामने मीडिया पे परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा टाइम दे लेना चाहिए और थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा।
जी अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, बाबर आजम आपने इनको काफी क्लोज अप से देखा हुआ है, मतलब काफी महीने से देख रहे हैं, क्या चीज है जो इनको इतना स्पेशल बनाती है आपकी नजर में एज अ कोच?
देखिए मेरे ख्याल से आमिर साहब बाबर आजम क्योंकि अगर वो नंबर वन प्लेयर हैं, दुनिया के टॉप के प्लेयर हैं सिर्फ एक फॉर्मेट में, नहीं सब फॉर्मेटों में, तो कोई तो उसमें ऐसी बात है। मेरे ख्याल से उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज़बरदस्त है, और अगर मैं उनको बाबर आजम की बात करूँ तो मैं फिर क्रेडिट बिल्कुल ये नहीं लूँगा, लेकिन जब बाबर आजम इस टीम में आए थे तो ये बात है 2014-15 की है जब हम सब वहाँ पे खेलते थे, तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सामने प्लेयर्स कौन से खेल रहे होते हैं। हम आज दुनिया की टॉप ऑर्डर की टॉप प्लेयर्स की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, जब हम जैसे प्लेयर टीम में आए थे तो हमारे सामने सईद अनवर, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, आमिर सुहेल, एजाज अहमद, सलीम मलिक जैसे प्लेयर हमारे सामने होते थे, तो वहाँ से लर्न करने के लिए आपके पास वो कहते हैं ना एक फैक्ट्री थी, हम फैक्ट्री में गए और हमने लर्न किया, तो आज के प्लेयर जो हैं थोड़ा सा वो मिस करते हैं। तो बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो ये उसी पीढ़ी के प्लेयर रहे हैं, और उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को खेलते हुए या उनके साथ देखा, उन्होंने यूनुस खान को खेलते हुए देखा, उन्होंने मिसबाउल हक को खेलते हुए देखा उनके प्राइम पे, तो ये वहां से आए हैं और उनको जो एक प्रोसेस है और फिर उनको टाइम पूरा प्रॉपर मिला। अगर मैं बात करूँ तो बाबर आजम चार पाँच छः साल के साथ वो टीम के साथ है, तो और फिर जो उनकी क्वालिटी है कि वो उन्होंने अपने रन्स करने हैं, ये जो बहुत एक जो रन्स करने की हंगर होती है वो मैं उनमें देख रहा हूँ, और अब बार बार वो क्योंकि वो कैप्टन बने, उनकी कैप्टनसी इंप्रूव हो रही है, उनकी शॉट सिलेक्शन और ज्यादा इंप्रूव है। मैं ये बिल्कुल भी कह नहीं रहा कि मेरी वजह से हुआ है, लेकिन क्योंकि जब आप दुनिया के टॉप के प्लेयर बन गए तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है, और मेरे ख्याल से बाबर आजम वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक्सपेक्टेशन पे कौम की, दुनिया की खास तौर पे वो उतरना चाह रहे हैं, और डे बाय डे उनकी हमने उनकी फिटनेस देखी कि बहुत ज्यादा फिटनेस उनकी इम्प्रूव हुई, उनकी टैक्टिक्स हमने देखे बहुत ज्यादा क्लियर, और खास तौर पे जो एक जैसे मैंने पहले कहा कि हंगर होती है रन्स करने की वो मौजूद है, उनकी टेक्निक बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रगल करते थे बाजुकात अगेंस्ट स्पिन स्ट्रगल करते थे, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने यहाँ पे आके उसको ओवरकम किया, और जिस तरह उन्होंने 100 किया है वो अमेजिंग था, कि उन्होंने स्पिन बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, उन्होंने अपनी हमने देखा कि उन्होंने अपनी पावर हिटिंग पे काम किया, उन्होंने हमने देखे इस सीरीज में कि उससे पहले वो स्वीप शॉट्स नहीं खेलते थे, उन्होंने स्वीप, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उनको सिखाया, लेकिन जब आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, जब आप एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना चाह रहे हो तो आप फिर आप कट शॉट भी खेल रहे होते हो, आप स्वीप शॉट भी खेल रहे होते हो, आप पुल शॉट भी खेल रहे होते हैं, अपनी अपनी फिटनेस भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें ये एक डिमांड है आज की क्रिकेट की कि आपको अपनी फिटनेस पे काम करना है, आपकी फिटनेस उस लेवल की, क्योंकि बड़ा मुश्किल सीरीज थी, अगर मैं बात करूँ 4 T20 हमने खेले और 8 दिनों में, अगर मैं ये 10 साल पहले बात करता तो बहुत मुश्किल होता था, हम तो अगर तीन मैचों की सीरीज खेलते थे तो 15 दिन में हमारी क्रिकेट होती थी, हमारे पास बहुत टाइम होता, लेकिन आजकल कोविड की वजह से, ट्रेवलिंग की वजह से बहुत ज्यादा टफ है, और प्लेयर्स को डे बाय डे अगर कोई प्लेयर नहीं खेल रहा होता है तो फिर उसको ट्रेनिंग भी बहुत दबा के करनी होती है, रोजे भी रखने के, हमने देखा कि हमारे एक प्लेयर ने बहुत जबरदस्त हमें मिसाल दी, उन्होंने बैटिंग भी की मोहम्मद रिजवान की शक्ल में, फिर उन्होंने पूरे इनिंग्स भी खेली, तो इतना टफ आपको होना पड़ेगा, अगर आप इतने टफ नहीं हो तो मेरे ख्याल से आप रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में आपका नाम नहीं कमा सकते, और इसी तरह ये सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए नहीं है, हम अगर सारे दुनिया की बात कर रहे हैं और जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, और मेरे ख्याल से ये कर देना चाहिए, क्योंकि जो एक एक खुशी होती है अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करना, अपने लिए परफॉर्म करना, अपने फैमिली के लिए परफॉर्म करना, वो बाबर आजम जैसे मुझे बहुत खुशी होती है, और बाज़ुकात मुझे यकीन करें मुझे आके लोग जब ये बात करते हैं कि इनमें बाबर आजम जैसे प्लेयरों में, मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयरों में, फखर जमान जैसे प्लेयरों में, वो जो हमें कहते हैं कि आप जैसे प्लेयरों की झलक नजर आ रही है, तो मेरे ख्याल से यही वो हमारी अचीवमेंट होती है जो कि हमें याद रह जाती है।
जी अब्बास, आपका
जी यूनुस भाई जी, आवाज आ रही?
जी आवाज आ रही।
अच्छा, ये जिम्बाब्वे के खिलाफ हम तजुर्बा देखते हैं, बैटिंग में मिडल ऑर्डर में काफी मसायल है, तुम्हें क्या नए चेहरे जो है उनको ट्राई करेंगे, तो रब हफीज जैसे सीनियर हैं वो तो ऑलरेडी, तो दानिश अजीज और इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनको आजमाएंगे, और दूसरा एक बात ये पूछनी थी कि आसिफ अली जो है आपने कहा कि बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी जो है वही परफॉर्म करते हैं, तो आसिफ अली का तो तजर्बा तो कम नहीं है, दानिश अजीज चले नए हैं, हैदर अली नए हैं, लेकिन आसिफ का तो काफी तजर्बा है, तो इसके बावजूद वो जब भी कोई क्रूशियल मोमेंट होता है तो विकेट सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो क्या अब भी हम उनके साथ तजर्बा जारी रखेंगे?
देखिए मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स को पूरा मौका दे देना चाहिए, क्योंकि बाजू का प्लेयर भी डबल माइंडेड होते हैं, और जब वो खासतौर पर आसिफ अली जैसे प्लेयर को जब वो बार बार इन और आउट हो रहे होते हैं, तो देखिए प्लेयर को भी देखें, प्लेयर का भी हर प्लेयर बहुत ज्यादा जावेद खेजा जैसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं होता, शाहिद अफरीदी जैसा स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर नहीं होते, सईद अनवर जैसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर नहीं होते, मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा मौका दे देना चाहिए, ताकि कल को फिर कोई ऐसी खलिश उनके दिल में भी ना हो और मैनेजमेंट के भी दिल में ना हो कि हमने इनको पूरा मौका नहीं दिया। और जहां तक दानिश अजीज की बात है, हैदर अली की बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज की बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज की बहुत सारी बातें होती है सीनियर प्लेयर के लिए, ये नहीं कि मेरे साथ बहुत क्रिकेट खेले मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, बल्कि मैं हर प्लेयर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान का प्राइड होते हैं, पाकिस्तान के ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो मेरे साथ क्रिकेट खेले हुए हो या मेरे दौर में नहीं खेलो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको अच्छी मेंटोरिंग करता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ उनको बैटिंग ना सिखा सकूँ, देखिए बैटिंग तो कोई भी आके सिखा देगा, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको लाइफ सिखाऊँ, कि लाइफ में अप एंड डाउन जब होते हैं, और आप हमने अपने लाइफ में अप एंड डाउन बहुत देखे हैं, तो आप से उसको ओवरकम कैसे करते। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं उनकी, ठीक है उनकी टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके टैक्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम भी नहीं होता है लेकिन टाइम निकालना भी पड़ता है, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जब मैं नहीं रहूं उस टीम के साथ तो ये प्लेयर चाहे इनके साथ हम जैसा कोच खड़ा हो या ना खड़ा हो, या इवन हमसे अच्छे कोचेस खड़े हो या ना खड़े हो, ये खुद लर्न करें अपनी लाइफ को और मूव फॉरवर्ड करें। तो मेरे ख्याल से आसिफ अली उस फेज में है कि उसको हम सब की सपोर्ट दरकार है, क्योंकि हमने उनकी लाइफ देखी है पिछले दिनों, उनकी उनकी बेटी का वो उसमें फंसे हुए थे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सी चीजें माइंड में चली होती है। और जरूरी नहीं कि हर इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो या स्ट्रांग नजर आ रहा होता है लेकिन अंदर से इतना स्ट्रांग हो, तो मेरे ख्याल से हमें इनको ऐसे प्लेयर्स को पूरा मौका दे देना चाहिए ताकि इनके साथ इंसाफ हो। और मेरे ख्याल से अभी जिम्बाब्वे की सीरीज आ रही है, जो भी प्लेयर्स हैं हमारे पास उनको पूरे मौके देने चाहिए, दानिश अजीज जैसे प्लेयर्स हो गए, आसिफ अली जैसे प्लेयर्स हो गए, हैदर अली जैसे प्लेयर हो गए, इनको पूरे मौके दे देने चाहिए ताकि हम उनसे उनका बेस्ट ले लें। और यही वो मौके होते हैं जो कि आपको अवेल करने, प्लेयर्स को प्लेयर की भी कोशिश होनी चाहिए कि जब उनको सपोर्ट मिल रही होती है कंट्री से तो कंट्री के लिए खेलें, कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मुल्क की बात आती है तो बाज़ आपके टेक्निक नहीं होती, आपके टैक्टिक्स नहीं होते, लेकिन जो आपकी नीयत होती है, और हम मुसलमान का इस पे कामिल यकीन है कि जब आपकी नीयत बेहतर होती है, आपकी सोच बेहतर होती है, तो बाज़ ये टेक्निक है, हम जैसे प्लेयर भी जो टेढ़े मेढ़े खड़े होते थे हम भी इतना कुछ अचीव कर लिए, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर थे जिनकी टेक्निक्स नहीं थी, जिनकी टैक्टिक्स भी बाज़ नहीं होते थे लेकिन वो परफॉर्म करते थे। मेरे ख्याल से हमें इनको सपोर्ट कर देना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें और हम उनके साथ इंसाफ कर दें।
ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका। पाकिस्तान टीम अभी 2 बजे फ्लाई करेगी जिम्बाब्वे के लिए, इंशाल्लाह।